एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
मगर वो वक्त आता है बल्कि अभी है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। परंतु वे समय आ रहा है, वारन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें।
आराधना हो स्वर सुसज्ज यीशु इस पावन धरा पर, आज हर मना है लज्जित पाप और अनुचित किए पर, आराधना हो, आराधना हो।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को और हमारे हृदयों को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं। विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो पिता, जो तेरे वचन को सुन रहे हैं वे तेरे वचन को सुन करके तेरा आशीष पाने सके। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ्य के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है शांति का परमेश्वर। आइए मेरे साथ बाइबल का वचन देखें जो मिलता है यशाया 32 का 17 और 18 पद में। यहाँ लिखा है, धर्म का फल शांति होगा और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंतता रहेगा। मेरी प्रजा शांति के स्थानों में और निश्चिंत घरों में बसी रहेगी। यह कितना सुंदर परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। हमारे परमेश्वर ने यह व्यवस्था की है कि जो कोई मसीह को स्वीकार करता है और आत्मा की आज्ञा मानता है वह कल्पना से परे शांति और संतुष्टि का अनुभव करेगा। प्यारो, परमेश्वर कोई भी ऐसा कथन नहीं करता जो सत्य ना हो। वह हमेशा सच बोलता है, ना ही वह कोई ऐसा वादा करता है जिसे वह पूरा ना करे। धार्मिकता और शांति के बीच के संबंध के बारे में वह जो कहता है वह पूरी तरह से सत्य है और वह अपने लोगों से जो वादा करता है वह पूरी तरह से निश्चित है। धार्मिकता का मूल स्वभाव ही है कि जो लोग धार्मिक हैं उनके लिए शांति लाए और जो लोग धार्मिकता को स्वीकार करते हैं उनके लिए आंतरिक कलह का अंत करे। यह इस दुनिया में अभी सच है और यह नई धरती पर हमेशा के लिए सच रहेगा। क्योंकि संत परमेश्वर के वचन के अनुरूप धार्मिकता की एक नई दुनिया की आशा करते हैं, इसलिए वे उसकी प्रतिज्ञाओं के अनुरूप शांति के स्वर्ग की आशा कर सकते हैं। परमेश्वर के लोग वे हैं जिन्होंने अपने दिलों और जीवन में संघर्ष की जगह शांति को अनुमति दी है। इस कारण से जिस भूमि पर वे हमेशा के लिए रहेंगे उसमें सभी के लिए सुरक्षित निवास होंगे, जिसमें शांत विश्राम स्थल होंगे। आइए हम आज शांति और धार्मिकता के बीच के संबंध के बारे में जानें, साथ ही परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में प्रकट होने दे ताकि उसके परिणामों को भी हम पाएं। हम पढ़ते हैं कुलुसियों 1:19-22 में। यहाँ पर लिखा है 19 पद कहता है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। 21 पद कहता है, और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। प्यारे, हम यहाँ देखते हैं लोग जो पहले मसीह को नहीं अपनाए थे वे बुरे काम करते थे और सच्चाई और धर्म के बैरी थे, परंतु जब वे मसीह को अपनाए वे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गए। धर्मी परमेश्वर के साथ वे मेल मिलाप में आ गए। एक शांति है जो इस संसार की है, अंत में एक झूठी शांति, और एक शांति जो यह संसार नहीं दे सकता, और वह शांति है यीशु मसीह का, जिसे यीशु मसीह देता है। और वह शांति पाकर हम अनंत विश्राम और शांति अनुभव कर सकते हैं। यीशु हमें बताते हैं कि उनकी सुरक्षा की भावना, उनकी शांति उन परिस्थितियों पर आधारित नहीं थी जिनमें उन्होंने खुद को पाया, यहाँ तक कि उन परिस्थितियों का अर्थ समझने में भी सक्षम नहीं थे, बल्कि उनके पिता पर पूर्ण अटूट विश्वास पर आधारित थी। हम इसे पढ़ सकते हैं यूहन्ना 14 का 27 से 31 में। वह जानते थे, यीशु मसीह जानते थे कि उनके पिता उनके अनुभव में ऐसी किसी भी चीज को आने की अनुमति नहीं देंगे जो उनकी योजना का हिस्सा नहीं थी। आइए हम शांति और पवित्रता के विषय आगे जाने। इब्रानियों 12 का 14 में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। यहाँ पर कहता है कि पवित्रता के बिना कोई प्रभु परमेश्वर को नहीं देखेगा। यहाँ पर शांति और पवित्रता का संबंध है। इस तरह की आज्ञा का अस्तित्व होना यह दर्शाता है कि इसका पालन करना आसान नहीं है। इसके लिए एक लक्ष्य की आवश्यकता होती है जिसे हमें प्रयास के साथ प्राप्त करना होता है। बाधाओं पर ध्यान ना देते हुए हमें ध्यान देना चाहिए कि दूसरों के साथ इस तरह से पेश आना युद्ध या परेशानी की अनुपस्थिति से कहीं ज्यादा मायने रखता है। इसका मतलब है कि हम दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, कि हम अब ईर्ष्या लालच या घृणा से प्रेरित नहीं होते, बल्कि हमारे दिलों में चमकते परमेश्वर के महान प्रेम से प्रेरित होते हैं। यशाया 26 का 3 कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनका मन उनका हृदय पूर्ण शांति से भरा रहेगा। यहाँ पर हम एक उदाहरण पाते हैं। अपनी आत्मकथा में रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने अपने बचपन के एक दिन के बारे में बताया है, जब उन्होंने गलती से खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया था। वह खुद को मुक्त करने के लिए चाबी नहीं घुमा पा रहे थे, उसे नहीं घुमा पा रहे थे, और काल्पनिक दुश्मनों के कारण वह डरे हुए थे, जब तक कि उनके पिता दरवाजे पर नहीं आए और उन्हें बुलाया। फिर वह शांत हो गए। थोड़ी देर में उनके पिता की आवाज के संगीत ने उन्हें अपने आसपास के माहौल और उनके डर को भूलने पर मजबूर कर दिया, और उन्होंने वास्तव में ताला बनाने वाले के आने से पहले अपने कारावास के शेष समय का आनंद लिया। इसलिए हम भय, कठिनाइयों, खतरों, हर तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन कर सकते हैं, क्योंकि हमें याद है कि ईश्वर हमारे साथ है, जो आश्वस्त करने वाली बातें करता है। प्यारो, जब परमेश्वर हमारे साथ है, आसपास कोई भी कठिनाई अंधकार हो, हम परमेश्वर में भरोसा करके शांत रह सकते हैं। शांति पवित्रता से बहुत करीब से जुड़ी हुई है, और पवित्रता ईश्वर से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। यह किसी भी कीमत पर शांति का मामला नहीं है। ईसाई को शांति के लक्ष्य का पीछा केवल ईसाई सिद्धांतों के अनुकूल तरीकों से करना चाहिए। सच्ची शांति दिल और आत्मा का मामला है। भीतर की शांति खुशी पैदा करती है। परमेश्वर के लोग खुश लोग हैं, क्योंकि वे शांतिपूर्ण लोग हैं। स्वर्ग खुशी का स्थान होगा, क्योंकि यह शांति का स्थान है। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंदित होंगे। यह भजन 37 का 11 में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का व्यवस्था भी शांति का व्यवस्था है। आइए हम भजन संहिता 119 का 165 देखें। यहाँ पर लिखा है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगेगी। भजन संहिता 119 का 165। परमेश्वर ने अपने और सभी सृजित प्राणियों के बीच घनिष्ठ और खुशहाल संगति बनाए रखने के लिए अपना नियम बनाया है। यदि हम इसके पहले चार नियमों में से किसी का भी उल्लंघन करते हैं, तो हमारे और परमेश्वर के बीच संघर्ष होगा। यदि हम अंतिम छह आज्ञाओं में से किसी का भी उल्लंघन करते हैं, तो न केवल हमारे और दूसरों के बीच, बल्कि हमारे और परमेश्वर के बीच भी संघर्ष होगा। परमेश्वर की इच्छा के प्रति प्रेमपूर्ण आज्ञाकारिता हमारे हृदय में उसकी शांति लाती है। प्यारो, याद करिए सद्रक, मेशक और अबेदनगो को, बाइबल के तीन व्यक्तियों को, तीन युवक को, जो दूरा के मैदान पर जब नबूकदनेस्सर एक बड़ा सा मूर्ति, सोना का मूर्ति बनाया और उन्हें दंडवत करने के लिए कहा। वे लोग जानते थे कि सिर्फ परमेश्वर यहोवा की उपासना करना है जो स्वर्ग में है, जो सबको बनाया, उसे छोड़कर किसी मूर्ति का उपासना नहीं करना है। इसीलिए वे दंडवत करने के लिए राजी नहीं हुए और वे कहे, आप मुझे मार डालिए, आग के भट्ठा में भी डालिए, लेकिन हम लोग आपके मूर्ति के सामने शीस नहीं झुकाएंगे। हम लोग केवल सच्चा परमेश्वर जो हमें बनाया उसकी उपासना करेंगे। उन्हें कोई डर नहीं था। उन्होंने कहा, यदि परमेश्वर हमें बचाएगा तो ठीक है। और जानते थे कि परमेश्वर उन्हें उनका बचाने वाला है। और उन्होंने यह भी कह दिया राजा को कि यदि परमेश्वर नहीं बचाता है फिर भी हम तेरे मूर्ति के सामने नहीं दंडवत करेंगे। उनके पास यह भरोसा था और वे लोग यह कह सकते थे क्योंकि उनको परमेश्वर का शांति था। वे लोग परमेश्वर के चरित्र, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते थे। स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया था क्योंकि लुसिफर ने अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर रखने का प्रयास में कानून के सबसे पहले सिद्धांत का उल्लंघन किया। क्योंकि आदम और हवा ने अवज्ञा की, इसलिए अदन शांति से वंचित हो गया और मानव जाति को उस शांति और खुशी से वंचित कर दिया गया जो परमेश्वर ने उसकी आत्मा में रखी थी। पाप ने अशांति लाई। स्वर्ग सभी प्रकार की खुशियों और शांति का शाश्वत घर होगा क्योंकि वहां रहने वाले सभी लोगों के हृदय में परमेश्वर का शांति का नियम लिखा हुआ है और वे अपने जीवन में उसका पालन करते हैं। हम गलातियों 5:22-23 में आत्मा का फल पाते हैं जो कि प्रेम, शांति, भलाई और संयम और विश्वास, इस सब आत्मा का फल है जो हम यीशु मसीह में बने हैं। आत्मा में हम रहते हैं तो आत्मा हमें इन फलों को देती, हमारे जीवन में आने देता है। हम अपने जीवन में आत्मा का फल लाएंगे, यह आत्मा का वरदान है। हालांकि स्वाभाविक हृदय परमेश्वर के विरुद्ध है, न्याय के विरुद्ध है, शांति के विरुद्ध है, फिर भी उसे ऐसा ही रहने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने एक उपाय प्रदान किया है। उसने हमें पाप के प्रति दोषी ठहराने और हमें विजय पाने की शक्ति देने के लिए अपने पवित्र आत्मा को संसार में भेजा है। शरीर के कामों के बजाय हमें आत्मा के फल का आनंद लेना चाहिए। घृणा, क्लह, क्रोध और झगड़े के स्थान पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद और शांति है। कभी कभी शांति नाटकीय तरीके से मसीहों पर छा जाती है। डॉक्टर आर ए टोरी लॉस एंजलिस के बाइबल संस्थान के संस्थापक और उनकी पत्नी उस समय गंभीर परीक्षा के दौर से गुजरे जब उनकी 12 वर्षीय बेटी की मृत्यु हो गई। उनके दिल भारी थे, उनका दुख तीव्र था। अंतिम संस्कार के दिन मौसम ने भी अपनी उदासी बढ़ा दी। जब छोटे से ताबूत को जमीन में उतारा जा रहा था तब वारिस उनके साथ थी। अगले दिन डॉक्टर टोरी को फिर से दुख की लहर महसूस हुई क्योंकि उन्होंने आने वाले सालों में उनके अकेलेपन, उनके घर के खालीपन और उनकी बेटी की मौत से उनके जीवन में आने वाले कई बदलावों के बारे में सोचा। दिल टूटने के दर्द के साथ उन्होंने मदद के लिए ईश्वर की ओर देखा। उन्होंने उस पल के बारे में लिखा है और तभी यह फौरा पवित्र आत्मा जो मेरे हृदय में था ऐसी शक्ति के साथ फूट पड़ा जैसा कि मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था और यह मेरे जीवन का सबसे आनंदमय क्षण था। ओह, पवित्र आत्मा का आनंद कितना अद्भुत है। यह एक अविश्वसनीय रूप से शानदार बात है कि आपका आनंद आपके आसपास की चीजों पर नहीं, आपके सबसे प्रिय मित्रों में भी नहीं है, बल्कि आपके भीतर एक फौरा है जो हमेशा फूटता रहता है, फूटता रहता है, फूटता रहता है। हर साल 365 दिन फूटता रहता है, सभी परिस्थितियों में अनंत जीवन तक फूटता रहता है। पवित्र आत्मा की शक्तिशाली शक्ति मानवकर्ता के चरित्र में संपूर्ण परिवर्तन लाती है। उसे मसीह यीशु में एक नया प्राणी बनाती है। आत्मा में निवास करने वाली शांति चेहरे पर दिखाई देती है। शब्द और कार्य उद्धारकर्ता के प्रेम को व्यक्त करते हैं। सर्वोच्च स्थान के लिए कोई प्रयास नहीं है, स्वयं एक त्याग किया जाता है। जो कुछ कहा और किया जाता है उस पर यीशु का नाम लिखा होता है। हम पढ़ते हैं मत्ती 10:34 में यह यीशु मसीह का कथन है। यहाँ पर वह कह रहे हैं, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह क्यों ऐसा कह रहे हैं, यह बात हम लूका 12:51 में भी लिखा पाते हैं। क्या तुम सोचते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति देने आया हूँ? नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ बल्कि विभाजन करने आया हूँ। दोनों सुसमाचारों में आगे की आयतें स्पष्ट रूप से बताती हैं कि कैसे अपने गुरु का अनुसरण करने वालों को बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा, कैसे उनके सबसे करीब लोग उनके सबसे जिद्दी दुश्मन बन जाएंगे। ईश्वर और धन, प्रकाश और अंधकार, धार्मिकता और पाप में कोई समानता नहीं है। मसीह की तलवार उसका सत्य का वचन है। जो लोग उसके वचन में बने रहते हैं वे उन लोगों से अलग हो जाते हैं जो उसके वचन को अस्वीकार करते हैं, जैसे तलवार शरीर को चीर देती है। यीशु का मिशन लोगों को ईश्वर से और इस प्रकार एक दूसरे से मिलाना था, लेकिन पूरी दुनिया शैतान के नियंत्रण में है जो मसीह का सबसे बड़ा दुश्मन है। सुसमाचार उन्हें जीवन के ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत करता है जो उनकी आदतों और इच्छाओं से पूरी तरह से अलग हैं और वे इसके खिलाफ विद्रोह करते हैं। यह इस अर्थ में है क्योंकि यह उच्च सत्यों को घृणा और संघर्ष का अवसर देता है। इसलिए सुसमाचार को तलवार कहा जाता है क्योंकि वह सत्य को बतलाता है और जो लोग बुरे लोग हैं, बुरे काम करते हैं, उनको वह चीरने का काम करता है। लेकिन वास्तव में यीशु मसीह सत्य का राजकुमार है। जो उसको अपनाते हैं, जो उसको ग्रहण करते हैं, उसको वह ऐसा शांति देता है जो दुनिया में कहीं ऐसा शांति नहीं मिल सकता है। प्यारो, हम शैतान के आक्रमण से भरे रहते हैं। शैतान हमेशा परमेश्वर के लोगों को मार डालने, गिराने, उन पर आक्रमण करने का चेष्टा करता है। इसे हम पढ़ते हैं पत्रस 5:8 में और प्रकाशित वाक्य 12:17 में। लेकिन हमारे लिए आश्वासन है, परमेश्वर का यह प्रतिज्ञा है। परमेश्वर कहते हैं 1 पत्रस 5:10 में कि और परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़े समय तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें स्थापित करेगा और बलवंत, दृढ़ और स्थिर बनाएगा। 1 पत्रस 5:10। बाहरी उथल पुथल और संघर्ष के बावजूद हम आंतरिक शांति का आनंद कैसे ले सकते हैं? आइए हम फिलिपियों 4:6-7 पद को देखें। यहाँ पर हम पढ़ने से पाते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मसीहों के रूप में हम जिस शांति का अनुरूप कर सकते हैं उसके चित्रों के लिए हम भजन संहिता 23 का समीक्षा कर सकते हैं। यह भजन कहता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जो लोग उसमें भरोसा करते हैं वे लोग शांति से सो सकते हैं, चाहे किसी प्रकार का चिंता या घटना इर्द गिर्द हो रही है, क्योंकि परमेश्वर पर उनका भरोसा है, वे शांत रह सकते हैं। जो लोग मसीह के वचनों को मानते हैं और अपनी आत्मा को उसके संरक्षण में, अपने जीवन को उसके आदेश पर समर्पित करते हैं, उन्हें शांति और स्थिरता मिलेगी। जब यीशु अपनी उपस्थिति से उन्हें प्रसन्न करते हैं तो दुनिया की कोई भी चीज उन्हें दुखी नहीं कर सकती। पूर्ण स्वीकृति में पूर्ण विश्राम है। यह बात बहन एलन जी वाइट द डिजायर ऑफ एजेस प्रेस 331 में लिखी है। जब स्वर्गदूतों ने यीशु के जन्म की घोषणा की, तो उन्होंने शांति के गीत गाए। परमेश्वर उन सभी के लिए अपनी कृपा और दया मुफ्त में प्रदान कर रहा था जो उन्हें स्वीकार करेंगे, दुनिया के उद्धारकर्ता के माध्यम से पापों की क्षमा लाएंगे। शास्त्र प्रकट करता है कि ईसाई परमेश्वर के साथ शांति और परमेश्वर की शांति का अनुभव कर सकते हैं। पहला अर्थ है पापी के विरोध परमेश्वर के क्रोध का अंत, दूसरा है मन में यह आश्वासन भर देने वाली शांति की व्यक्ति परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर चुका है। प्यारो, यदि आप ऐसा शांति चाहते हैं और ऐसा शांति आप पहले अनुभव नहीं किए हैं तो आज ही आप आइए, यीशु मसीह आपको बुला रहा है, आपको ऐसा शांति देना चाहता है। आप उसे ग्रहण करिए, उसे अपनाइए, आपको ऐसा शांति देगा जो दुनिया में आप कहीं नहीं पा सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं पिता, तुझे हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात किया है, हमें तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए और तेरे पास आने के लिए मदद कर। विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग पिता, उन्हें तेरे वचनों को स्वीकार करने और तेरे पास आने के लिए मदद कर, तेरा वचन को अपनाने और तुझसे अनंत शांति पाने के लिए मदद कर। पवित्र आत्मा हम सबों के संग प्रभु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudavenTIST.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।